पृष्ठ संख्या 276। रस भावाभिव्यंजना। जायसी, कुतुबन आदि सूफी कवियों की रचनाओं का प्रधान विषय प्रेम तत्व का निदर्शन एवं प्रेम व्यापारों का वर्णन होने के कारण उनकी भाव व्यंजना पद्धति की सीमा भी स्वभावतः वहीं तक पहुंची है जहां तक उसके अनुरूप समर्थक भावों का प्रश्न आ सकता है। सूफियों ने प्रेम के विरह पक्ष को विशेष महत्व दिया है और इसी कारण जितना ध्यान उन्होंने प्रेमी एवं प्रेमिका के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले विविध कष्टों तथा उनका अंत करने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न प्रयत्नों के वर्णन की ओर दिया है, उतना उनके अंतिम मिलन को भी नहीं दिया है। विरह की दशा वस्तुतः वह मनस्थिति है जिसमें रहते समय अपने सारे जीवन को ही प्रेम पात्र के प्रति नितांत एक निष्ठ बना देना पड़ता है। संयोग या मिलन के अनुभव में उतनी तीव्रता नहीं रह जाती और न इसी कारण उसमें किसी प्रकार की गति लक्षित होती है। विरह के भाव में पृष्ठ संख्या 277। एक विचित्र अंतः प्रेरणा निहित रहती है जो प्रेमी या प्रेमिका को कभी चैन की सांस नहीं लेने देती और सतत उद्योगशील बनाकर ही छोड़ती है। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, मार्ग में अनेक प्रत्यूह समक्ष आते हैं, वह संघर्षों से जूझता है, घबराता नहीं। प्रिय के मिलने की महत तीव्र आकांक्षा लेकर शूलों पर भी वह उत्साह पूर्वक चला जाता है। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन आदि सूफी कवियों ने भाव व्यंजना के क्षेत्र में 12 मासा और प्रकृति वर्णन को बहुत महत्व दिया है। प्रत्येक मास के ऋतुपरक प्रभाव का निदर्शन एवं नायक नायिका पर तजन्य प्रभावाभिव्यंजन का इन कवियों ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। इन वर्णनों के प्रसंग में प्रायः सर्वत्र भारतीय वातावरण की अवतारणा ही दृष्टव्य है। जहाँ फारसी साहित्य की काव्य रूढ़ियों का प्रभावातिशय हुआ है, वहाँ वर्णन अत्युक्तिपूर्ण किंबा अतिरंजित हो गए हैं। जायसी के पात्रों के नयनों से रक्त के आंसू ढूरी ढूरी पड़ते हैं और ऐसे स्थलों पर स्वाभाविकता का स्थान अत्युक्ति लेने लगती है। जायसी के अतिरिक्त प्राय अन्य सभी सूफी कवि विरह वर्णन के प्रसंग में भारतीय मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। कहीं कहीं ये कवि विरहणी के भावों में स्वयं बह जाते हैं और ऐसे स्थलों पर क्वचित कदाचित उस श्रृंखलता और विभत्सता भी दृष्टिगोचर होती है। इन कवियों के संयोगावस्था के वर्णन या तो भोग विलासमय है या कहीं कहीं रहस्यपरक। प्रेम तत्व की व्याख्या, सौंदर्य की लोकोत्तर कल्पना, प्रेम तत्व की अपूर्वता, अखंडता, कहीं कहीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का परिचय आदि इनकी रचनाओं में मिलते हैं। प्रेम के प्रसंग में ही उत्साह, शोक, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, दया, सहृदयता एवं सुजनता परक भावों की व्यंजना भी यहाँ प्रचुर मात्रा में दिख पड़ती है। इन सूफी काव्यों में मुख्य रूप से पात्रों के द्वारा रति, शोक, क्रोध और युद्धोत्साह नामक स्थायी भावों की व्यंजना कराई जाती है। पद्मावत में भय का आलंबन समुद्र वर्णन के प्रसंग में और विभत्स का आलंबन युद्ध वर्णन के प्रसंग में हम पाते हैं। रास का तो अभाव ही अभाव है। जैसे कि भाव व्यंजना के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि उन्होंने जबरदस्ती विभाव, अनुभाव, संचारी आदि को ठूंस कर पूर्ण रस की रस्म अदा करने की कोशिश नहीं की है। भावोत्कर्ष मात्र ही उनका प्रयोजन रहा है। पद्मावत में यद्यपि श्रृंगार ही प्रधान है पर उसके संभोग पक्ष में स्तंभ, स्वेद, रोमांच नहीं मिलते। वियोग में अश्रुओं का बाहुल्य है। भावाभिव्यंजना के प्रसंग में 2 बातें विशेष दृष्टव्य होती हैं। 1, कितने भावों और गूढ़ मानसिक विकारों तक कवि की दृष्टि पहुंचती है। 2, कोई भाव कितने उत्कर्ष तक पहुंचा है। जायसी में भावों के भीतर संचारियों का सन्निवेश बहुत कम मिलता है। पृष्ठ संख्या 278। पद्मावत में रतिभाव का प्राधान्य है पर उसके अंतर्गत भी हम असूया, गर्व आदि 2-1 संचारियों को छोड़ व्रीड़ा, अवहित्था आदि अनेक भावों का कहीं पता नहीं पाते। भावों के उत्कर्ष के क्षेत्र में जायसी बहुत बढ़े चढ़े हैं किंतु यह उत्कर्ष मुख्यतः विप्रलंब पक्ष में ही अधिक दिखाई पड़ता है। पद्मावत मूलतः एक प्रेम कथा है, अतः श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्ष का समावेश उसमें विशद रीति से हुआ है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों का भी समावेश कथा प्रसंगों के कारण हो गया है। ये गौण रस करुण, वात्सल्य, वीर, शांत और विभत्स हैं। वीर, शांत और विभत्स के संबंध प्रधानतः उत्तरार्ध के युद्धों से हैं। करुण रस जोगी खंड और सती खंड में व्यापक रूप से निरूपित हुआ है। वात्सल्य और शांत रसों के छोटे छोटे प्रसंग कई बार आए हैं। प्रेमाख्यानों की परंपरा प्रथितता के कारण इन कवियों की भाव व्यंजना प्रायः रूढ़िगत ही कही जाएगी। इन कृतियों के पात्र एक विशेष परिस्थिति में जन्मते हैं, एक ही प्रकार के प्रेम में पड़ते हैं, व्याकुल होते हैं, पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं, भांति भांति की बाधाओं से जूझते हैं और अंत में मिलन होता है। इन संदर्भों में कवियों ने ईरानी और भारतीय कथानक रूढ़ियों का आश्रय लेकर भाव व्यंजनाएं की हैं। अनेक सूफी कवियों का राज दरबारों में सम्मान था। दक्षिणी हिंदी के प्रायः सभी सूफी कवि राज दरबारों से संबद्ध रहे हैं। जायसी, जान आदि कवियों का भी दरबार में सम्मान रहा है। इस कारण इनके काव्यों में काव्यगत सौंदर्य का प्रदर्शन भी मिलता है। इन कवियों ने प्रायः वे ही कथाएं ली हैं जो जनजीवन से संबद्ध रही हैं। इस कारण सहज ही इनके काव्यों में जनजीवन के भावों की व्यंजना भी मिलती है। इनकी कथाओं में इनकी आत्मा अभिव्यक्ति अनुस्यूत है। इनमें प्रेम, पीर और तजनित उल्लास की भी अभिव्यंजना है। अंतह का राग और प्रेम भाव की अनुभूति इनके काव्यों में अभिव्यक्त है। इस कारण से भी इनके काव्य रस व्यंजना की दृष्टि से सफल हैं। हिंदी सूफी काव्यों के नायक प्रायः राजा या राजकुमार हैं। वे शौर्य, उत्साह, रूप, समृद्धि आदि से संपन्न हैं। वे प्रायः धीरोदात्त नायकों की कोटि में आते हैं। कई काव्यों में ये नायक धीरोदात्त और धीर ललित के समन्वित रूप में भी उपस्थित हुए हैं। ये प्रायः पति भी रहते हैं। नायिका से प्रेमोदय के पूर्व ये विवाहित होते हैं। नायिका का चित्र देखकर या रूप गुण प्रशंसा सुनकर या स्वप्न में उसे देखकर इनके हृदय में प्रेमोदय होता है। इन कवियों ने इन नायकों के एकांतिक प्रेम भाव की दृढ़ता का जमकर चित्रण किया है। नायक को त्यागी, कुलीन, समृद्धिशाली, रूप यौवन, उत्साह संपन्न, दृढ़, दक्ष, लोकरंजक और शीलवान विश्वनाथ साहित्य दर्पण पृष्ठ 85 होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 279। हिंदी सूफी कवियों ने अपने काव्यों में नायक को इन रूपों में चित्रित किया है। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की नायिकाएं प्रायः राजकुमारियां हैं। वे अत्यंत रूपवती विदुषी हैं। उत्तरी और दक्षिणी दोनों प्रेमाख्यानों की नायिकाएं राजकुमारियां या राजवंश से संबंधित नायिकाएं ही हैं। चूंकि ये अलौकिक सत्ता की प्रतीक हैं, अतः ये अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न भी हैं। इनके चित्रण में कवियों ने स्वकीया के भावों का ही चित्रण किया है। नायिका भेद भी इन कवियों का एक प्रिय विषय रहा है। प्रायः कवियों ने किसी न किसी बहाने नायिका भेद प्रकरण का उपस्थापन किया ही है। स्वकीया, परकीया, धर्म भेद से, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, आयु भेद से, उत्तमा, मध्यमा, अधमा, प्रकृति भेद से, पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तिनी, जाति भेद से, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, वासक सज्जा, स्वाधीन पतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यत पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका, परिस्थिति भेद से प्रभृति नायिकाओं का चित्रण इनके काव्यों में मिलता है। इंद्रावती, चित्रावली आदि में रूप गर्विता नूर मोहम्मद इंद्रावती पृष्ठ 9 175, प्रेम गर्विता वही पृष्ठ 9, स्वकीया वही पृष्ठ 26, मध्या वही पृष्ठ 35, पद्मिनी वही पृष्ठ 19, चित्रणी उस्मान चित्रावली पृष्ठ 35, आगत पतिका इंद्रावती पृष्ठ 163, स्वाधीन पतिका अनुराग बांसुरी पृष्ठ 101 आदि नायिकाओं और उनके भावों का चित्रण बड़े सुष्ठु रूप में मिलता है। इन कवियों की नायिकाएं प्रायः पद्मिनी ही रही हैं। दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन आदि ने पद्मिनी स्त्रियों और उनके भावों का सविस्तर वर्णन किया है। उस्मान ने चित्रावली को पद्मिनी रूप में चित्रित किया है, पर कई स्थलों पर उसे चित्रणी उस्मान चित्रावली चित्रिनी कहा हकारी परेवा पृष्ठ 35 भी कहा है। चित्रावली में कमलावती कृष्णाभिसारिका के रूप में भी उपस्थित दिखाई गई है। शेख नबी के ज्ञानदीप में देवजानी ज्ञानदीप से मिलने के लिए कृष्णाभिसारिका खोलहु सुरंग छबीली सारी नील बसन पहिरहु तनुबारी साम जलद बिच दामिनी जैसी दूरत मुरत अंधियारी तैसी शेख नबी कृत ज्ञानदीप से बन कर ही जाती है। पृष्ठ संख्या 280। उद्दीपन विभाव के संदर्भ में इन कवियों ने वन, पर्वत, सागर, चंद्र, चांदनी, प्रातः, सायं, ऋतु, भ्रमर, कोयल, पपीहा, चंदन, सर, सरिता, उपवन, बाग, तड़ाग, सखी, सखा, धाय आदि के वर्णन किए हैं। नायिकाओं के नक्षिक वर्णन भी उद्दीपन विभाव के ही अंतर्गत आते हैं। नायकों के सखा राजकुमार, मंत्री पुत्र, वैद्य, जौहरी, योगी आदि हैं। सखी, मालिन, दूती या धाय भी इनके यहाँ विद्यमान हैं। इंद्रावती में चेता मालिन ही राजकुमार और इंद्रावती का मिलन कराती है। भाषा प्रेम रस में भी मालिन यह कार्य करती है। शुक, हंस, परेवा, अप्सरा, हुदहुद, फारसी परंपरा भी यह कार्य संपादित करते हैं। पोहपावती में यह कार्य एक चित्र बंधनी स्त्री संपादित करती है। यूसुफ जुलेखा और प्रेम दर्पण में यह कार्य धाय करती है। जायसी ने नागमती विरह के संदर्भ में पंछी दूत की योजना भी की है। इंद्रावती में पवन दूत का प्रसंग आया है। तबई ने पवन दूत के माध्यम से गुलदाम तक नायिका का संदेश भिजवाया है। अरे बाव वायु, जा तू गुलदाम पास, मेरे पास ला उसके बाला की बास। अरे बाव कह यूं गुलदाम को, ऊ मोहन प्यारी दिलाराम को, बहराम व गुलदाम। तोहफे आशिका में दाई ही गुल और हुरमुस का मिलनोपाय बताती है। रिजवान शाह रू अफजा में भी नायक नायिका मिलन का कार्य दाई ही संपन्न कराती है। यूसुफ जुलेखा में भी दाई ही यह कार्य संपन्न कराती है। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण आलंबन, उद्दीपन और अलंकरण तीनों रूपों में किया है, पर इनके अधिकांश प्रकृति चित्रण उद्दीपन गत ही हैं। षड ऋतु और बारह मासा वर्णन में भी प्रायः उद्दीपन गत भावों का ही चित्रण हुआ है। प्रकृति भी नायक नायिकाओं के भावोद्दीपन में सहायिका है। कुतुबन, जायसी, मंझन आदि के काव्यों में प्रकृति के उद्दीपन रूप के अनेक चित्र मिल जाते हैं। नायिकाओं के नक्शिक या रूप सौंदर्य वर्णन के माध्यम से भी भावोद्दीपन का कार्य संपन्न कराया गया है। नक्षिक वर्णन हिंदी के सभी सूफी कवियों का एक प्रिय प्रतिपाद्य विषय रहा है। जायसी ने तो पद्मावत में 8 स्थलों पर रूप सौंदर्य वर्णन का विधान किया है। इन कवियों ने नायकों के सौंदर्य का भी निरूपण किया है। दक्षिणी हिंदी के कवियों ने भी रूप सौंदर्य वर्णन में बड़ा रस लिया है। इसी वर्णन के आधार पर प्रेम का उदय होता है, उसमें तीव्रता आती है। नुसरती ने मधुमालती नुसरती गुलशन इश्क पृष्ठ 71, 74, 203, 204 का नक्षिक वर्णन बड़े विस्तार से किया है। पृष्ठ संख्या 281। अंगज, अयत्नज और स्वाभाविक भावों के चित्रण इन कवियों के यहाँ प्रचुर परिमाण में मिल जाते हैं। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती में आपु ही आपु रीझ वह प्यारी, भई बिकल इंद्रावती बाला, अधर न हंसा न रद विहंसाना आदि में इंद्रावती की काम पीड़ितावस्था के विविध भावों का सुंदर निरूपण हुआ है। कमलावती चित्रावली में की इसी अवस्था के इन भावों का चित्रण उस्मान ने भी किया है। यूसुफ जुलेखा, पोहपावती आदि में भी इन भावों के चित्रण मिलते हैं। नायिकाओं की कांति, दीप्ति, मधुरता, प्रगल्भता, उदारता आदि अयत्नज अलंकारों भावों के चित्रण भी इन सभी कवियों के काव्यों में मिलते हैं। स्वभावज भावों या अलंकारों यथा लीला, विलास, विवोक, किल किंचित, विभ्रम, ललित, मुद्दायित, कुद्दमित, मद, विक्षेप, कुतूहल, चकित, केली आदि के भी चित्रण इन काव्यों में मिलते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के उभय पक्षों का वर्णन इन काव्यों में मिलता है, पर प्रधानता वियोग श्रृंगार की ही है, क्योंकि इसी के माध्यम से इन कवियों ने आत्मा और परमात्मा के विरह भाव को अभिव्यक्ति दी है। संयोग पक्ष, यद्यपि सूफी काव्य वियोग श्रृंगार प्रधान है, पर उसमें संयोग श्रृंगार का भी पूरा पूरा वर्णन हुआ है। षड ऋतु वर्णन का आयोजन इन कवियों ने संयोग श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से ही किया है। जायसी ने रत्नसेन नागमती के संयोग का केवल एक दृश्य दिखलाया है। सिंघल से लौटने पर रत्नसेन दिन भर व्यस्त रहा। भई निसी नागमती पह आवा, नागमती में मान का भाव जागृत होता है। सपत्नी को लक्ष्य करके वह कहती है, तुम मुख चमके बीजुरी, मोहि मुख बरसत मेह। इस अवसर पर रत्नसेन चाटुकार बन जाता है और अंत में उसे गले लगा लेता है। कंठ लाई के नारी मनाई, जरी जो बेली सींची पलुहाई, हुलसे नयन दरस मदमाते आदि। जायसी ग्रंथावली नागरी विचारणी सभा पृष्ठ 122-123। रत्नसेन जब बारात सजाकर आता है, तब पद्मावती के प्रेमातिशय औत्सुक्य और हुलास भावों की कोई सीमा नहीं। फारसी के कवियों ने संयोग पक्ष के अंतर्गत कहीं कहीं प्रेम के मानसल भावों का भी चित्रण किया है, पर उनके काव्यों में संयोग चित्रण का अभाव है। रूमी का कथन है, पर्दा बरदारो बिरहना गोखी मन, मीन खुस्यम वासनम वा पहरहन। मौलाना रूमी, जगदीश चंद्र वाचस्पति, पृष्ठ 128, पृष्ठ संख्या 282। पर्दा उठा दो और साफ साफ कह दो कि यार के साथ कुर्ती पहनकर नहीं सोती, यार के साथ सोने का लुत्फ कुर्ती उतार कर सोने में है। अमीर खुसरो ने शीरी खुसरो नामक मसनवी में संभोग का चित्रण किया है। गिरफ्तार दस्ते यक दीगर चू मस्तान शुदंद अजबज्म ग सुपे शबिस्ता न खुश्त आतश नए लव खुश्क बेताब दहन अज आबे हैवा कर्द सहराब चू फारिग शुद जे शरबत हाय चूनोश कशीद आशबर्रा चू गुल दरा गोश। शीरी खुसरो अमीर खुसरो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1927 ईस्वी पृष्ठ 240। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा वे महफिल से शयन कक्ष की ओर चले। सर्वप्रथम उस प्यासे होंठ वाले तथा सूखे लब बेताब ने मुंह का आबे हयात से सैराब किया और जब वह मधुपान से फारिग हुआ तब उसको अपनी गोद में खींच लिया। इसके पश्चात खुसरो ने संभोगावस्था का पूरा पूरा चित्रण किया है। ईरान की मसनवियों में संयोग चित्रण तो मिलते हैं पर संभोग चित्रण नहीं मिलते। जामी और निजामी की मसनवियों में संभोग चित्रण नहीं है। खुसरो की यह प्रवृत्ति भारतीय वातावरण के कारण है। इसका मूल स्रोत भारतीय साहित्य में है। भारतवर्ष में लिखी गई मसनवियों शीरी खुसरो अमीर खुसरो कृत और नल दमन फैजी नवल किशोर प्रेस लखनऊ 1930 ईस्वी पृष्ठ 216 फैजी कृत में इस प्रकार का चित्रण मिलता है। बहुत संभव है कि जायसी मंजन आदि ने अमीर खुसरो के प्रभाव से या भारतीय परंपरा के प्रभाववश संभोगावस्था के चित्रण किए हों। संस्कृत काव्य में संभोग चित्रण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इन कवियों ने प्रायः कामशास्त्र को आधार बनाया है। कुमार संभवम अष्टम सर्ग कालिदास कृत नैषद महाकाव्य 18वां सर्ग चौर पंचाशिका कवि विल्हण कृत ओरिएंट बुक एजेंसी पूना और गीत गोविंद अनुवाद प्रोफेसर विनय मोहन शर्मा में संभोग वर्णन देखे जा सकते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में भी इस प्रकार के चित्रण मिलते हैं। वस्तुतः भारतीय लक्षण ग्रंथकारों ने महाकाव्य में संभोग चित्रण को एक आवश्यक तत्व के रूप में माना है। संभवतः इसी कारण महाकवियों ने संभोग चित्रण से अपने महाकाव्यों को सजा दिया है। साहित्य दर्पणकार ने तो स्पष्ट लिखा है कि पृष्ठ संख्या 283 संभोग विप्रलंभांच मुनि स्वर्ग पुरा ध्वरा साहित्य दर्पण षष्ठ परिच्छेद श्लोक 323 तथा दंडी ने भी लिखा है उद्यान सलिल क्रीड़ा मधुपान रतोत्सव काव्यादर्श दंडी प्रथम परिच्छेद श्लोक 16। इन आचार्यों की कृपा का प्रसाद रहा है कि इस प्रकार के चित्रण की रूढ़ी ही स्थापित हो गई। ढोला मारूरा दूहा नागरी पिचारणी सभा छंद 141 से 143 छिताई वार्ता नागरी पिचारणी सभा छंद 192 से 200 सदैव वत्स सावलिंगा माधवा नल काम कंदला प्रबंध पृष्ठ 106-107 नल दमन रस रतन प्रेम प्रगास पुहपावती बेली कृष्ण रुकमणि री विद्यापति पदावली संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी प्रवृत्ति काव्यों में संभोग चित्रण का कवियों ने रसमय वर्णन किया है। विद्यापति के कई पदों में भी इस प्रकार का चित्रण उपलब्ध है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि फारसी की मसनवियों में संभोग का इस प्रकार का चित्रण नहीं मिलता। हिंदी सूफी काव्यों में संभोग का जो चित्रण मिलता है इसके मूल में भारतीय प्रभाव और एतद विषयक परंपरा है। इस्लामी शासकों की विलास प्रियता भी इसके मूल में है। साथ ही इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का भी प्रभाव है। जायसी ने पद्मावती और रत्नसेन के संभोग का जमकर वर्णन किया है। भई जूज जस रावण रामा सेज बिधासी बिरह संग्रामा लीन लंक कंचन गढ़ टूटा कीन सिंगार अहा सब लूटा अजोबन मैमंत बिधासा बिचला विरह बीच सोनासा पुहुप सिंगार समार सब जोबन नवल बसंत अर्गज जिमि हिय लाइक मरगज कीन्हेउ कंत जायसी ग्रंथावली नागरी पिचारणी सभा पृष्ठ 141-142। इस प्रसंग में प्रयुक्त मैमंता शब्द विशेष द्रष्टव्य है। इसमें एक ओर मदमस्त हाथी का अर्थ है दूसरी ओर अहंता या अहम का अर्थ है। अहम का विध्वंस प्रेम साधना में अपेक्षित है। पद्मावती इस अवसर पर विनती करती है कि हे प्रिय मधु को थोड़ा थोड़ा चखो और रत्नसेन कहता है सुनु धनी प्रेम सुरा के पिए मरण जियन डर रह नहीं है वही पृष्ठ 141। जामी ने भी इसी प्रकार की बात कही है सांसारिक प्रेम को छक कर पियो पृष्ठ संख्या 284 ताकि तुम्हारे होंठ और अधिक शुद्ध सुरा का पान कर सकें यूसुफ जुलेखा अनुवाद रेल्फ टॉ एच ग्रिफिथ पृष्ठ 24। जायसी का यह चित्रण स्थूल हो गया है। सुराही, प्याला, सुरा आदि के सूक्ष्म रूप दब गए हैं। सूफियों के यहाँ मद्यपान ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है, इसी कारण कवि ने सुहाग रात्रि के चित्रण में इसकी योजना की है। भारतीय साहित्य में इस प्रकार के चित्रण प्राय नहीं किए जाते थे। काम भी धर्म, अर्थ और मोक्ष की तरह महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय धर्म साधना में भी काम का महत्व रहा है। संभवतः इस प्रकार का चित्रण तंत्र साधना का प्रभाव है। कोणार्क और जगन्नाथ जी के मंदिरों में विविध आसनों के चित्र, कालिदास, जयदेव, विद्यापति आदि के तद विषयक चित्रणों की ओर दृष्टि का चला जाना स्वाभाविक है। आज भी रहस्यवादी कवि शेफाली और शिशिरबिंदु और जूही की कली की क्रीड़ा व्यक्त करने से नहीं चुके हैं। पद्मावती श्रृंगार मंडित होकर रत्नसेन के पास जाती है, उस समय का एक मनोहारी चित्र दृष्टव्य है। साजन ले पठावा आप सुजाई न भेंट, तन मन जोबन साज के देई चली लै भेंट। मन का सजाना समागम की उत्कंठा या अभिलाषा है। बिना इस मन की तैयारी के तन की सब तैयारी व्यर्थ है। नायक नायिका के बीच कुछ वाक चातुर्य और परिहास भी भारतीय प्रेम प्रवृत्ति का एक मनोहर अंग है, अतः उसका विधान यहाँ के कवियों की श्रृंगार पद्धति में चला आ रहा है। भारतीय प्रकृति के अनुसार संयोग पक्ष की नाना वृत्तियों का भी कुछ विधान हो जाने से जायसी का प्रेम आनंदी जीवों द्वारा बिल्कुल मुहर्रमी कहे जाने से बाल बाल बच गया है। जायसी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा पृष्ठ 96। पद्मावती ने कहा, तू जोगी और मैं रानी, तेरा मेरा साथ कैसा। संयोग श्रृंगार की परंपरा में जायसी ने हावों का भी सन्निवेश किया है। आहट हो सी जोगी तोरी चेरी, आवे बास कुरकुटा केरी, जोगी तोरी तपसी कै काया, लागी चहे मोरे अंग छाया। संभोग श्रृंगार की रीति के अनुसार जायसी ने अभिसार का भी पूरा पूरा वर्णन किया है। पद्मावती के समागम की कुछ पंक्तियां अश्लील भी हो गई हैं, पर सर्वत्र जायसी ने प्रेम का भावात्मक रूप ही प्रभाव प्रधान रखा है। भोग विलास के बीच में भी प्रेम का भावात्मक स्वरूप प्रस्फुटित दिखाई देता है। रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम पूर्वापर प्रेम है। जायसी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा पृष्ठ 96। पृष्ठ संख्या 285। रतिभाव के अंतर्गत कुछ मानसिक दशाओं की व्यंजना भी जायसी ने की है। कौन सो दिन जब पियू मिले, यह मन राता जासु, वह दुख देखे मोर सब, हाँ दुख देखो तासु। इस दोहे में अभिलाष का अत्यंत सुंदर प्रकृत रूप द्रष्टव्य है। तो लौ रह झुरानी, जौ लही आव सो कंत, एही फूल एही सेंदूर, होई सो उठे बसंत। इस दोहे में आशा और विश्वास की सुंदर व्यंजना हुई है। बादल की नई नवेली बहू के चित्रण में वितर्क संचारी का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। रहो ल जाई तो पियू चले, कहो तो कह मोहि ढीठ। उस्मान का संभोगावस्था का वर्णन अश्लीलता की सीमा पार कर गया है। नूर मोहम्मद ने भी इस संदर्भ में इंद्रावती में अश्लील रूपकों की योजना की है। इस वर्णन के संदर्भ में इन कवियों ने चौसर, शतरंज आदि खेलों और पहेली बुझाने की बातों का भी उल्लेख किया है। दक्षिणी हिंदी के सूफी कवि भी इस चित्रण में उत्तरी हिंदी के सूफी कवियों से पीछे नहीं रहे। उन्हें अपने सुल्तानों को प्रसन्न भी तो करना था। नुसरती ने भी संभोग चित्रण के संदर्भ में अश्लील रूपकों की योजना की है। मुल्ला नुसरती, गुलशन इश्क पृष्ठ 192-94। वजही ने कुतुब मुश्तरी में इस अवसर पर संयम से काम लिया है। वजही कुतुब मुश्तरी पृष्ठ 85-87। पृष्ठ संख्या 286। विप्रलम्ब श्रृंगार। जब तक साधक वियोगाग्नि में तपकर निखरता नहीं, तब तक प्रिय से संयोग नहीं होता। ईश्वर से मिलन भी तभी संभव है जब जीव सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठे। सूफी काव्य साधना के एक विशिष्ट पद्धति की दृष्टि से लिखे गए, इस कारण उनमें विरह को विशेष महत्व दिया गया है और विरह का विस्तृत चित्रण भी किया गया है। निजामे कृत लैला मजनू में मजनू मृत्यु पर्यंत विरह में तड़पता ही रहता है। खुसरो शीरी में फरहाद भी विरह में तड़प तड़प कर मर जाता है। जामे कृत यूसुफ जुलेखा में जुलेखा भी जीवन भर विरह में तड़पती रहती है। जायसी का कहना है कि प्रेम में विरह और रस दोनों हैं, जैसे मोम के छत्ते में बर्रे और शहद दोनों रहते हैं। पद्मावत संपादक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, छंद 116। वियोग श्रृंगार का पद्मावत में विशद चित्रण मिलता है। पद्मावत में नागमती और पद्मावती दोनों के विरह चित्रण मिलते हैं। दोनों लगभग समान हैं, इनमें कोई विशेष भेद नहीं है। कवि प्रेम पात्र में भेद नहीं करता। प्रेम चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक, उसमें प्रकार भेद हो सकता है, तत्व भेद नहीं। पद्मावत की 57 खंडों में 15 खंडों में विरह चित्रण किया गया है। विद्वानों का विचार है कि नागमती वियोग खंड जैसी वस्तु और भाव व्यंजना हिंदी काव्य में अन्यत्र नहीं है। नागमती वियोग और संदेश केवल इन्हीं 2 खंडों को लेकर लिख कर जायसी अमर हो जाते हैं। नागमती का अपना पति तोते के मुख से एक दूसरी स्त्री का रूप सौंदर्य वर्णन सुनकर 7 समुद्र पार सिंघल की ओर चला गया है। उसकी गोद भी सुनी है, इसी पृष्ठभूमि पर उसका विरह चित्रित है। वेदना का इतना मार्मिक, गंभीर, पवित्र और प्रभु विष्णु वर्णन सचमुच अन्यत्र दुर्लभ है। जायसी का एक एक दोहा विरह भाव का अगाध सागर है। सारस जोरी कौन हरी, मारे बियाधा लीन है, झुरी झुरी हों पिंजर भई, विरह काल मोहिदीन है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारव ओ गर्व, कंत प्यारा बाहिर है, हम सुख भूला सर्व। पर्वत समुद्र आगम बिच, बीहड़ घन बन ढाख, किमि कै भेंटो कंत तुम, ना मोहि पाव न पाख। भारतीय काव्य शास्त्र में वियोग 4 प्रकार का माना गया है, पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। पूर्व राग को कुछ आचार्यों ने अभिलाष मात्र मानकर गंभीर वियोग के लिए अनुपयुक्त माना है। पद्मावत में प्रणय मान और ईर्ष्या मान, पृष्ठ संख्या 287, दोनों भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इनके वर्णन में कवि की चित्रवृत्ति अधिक रमी है। प्रवास जनित विरह के भावों की व्यंजना में तो जायसी बेजोड़ है। जायसी का विरह वर्णन अतियुक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, उसमें सौंदर्य भरा हुआ है। इनकी अतियुक्तियां बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होती हैं। उनके अंतर्गत जिन पदार्थों का संकेत होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुभूति का आभास देने वाले होते हैं, बाहर से ताप की मात्रा नापने वाले मानदंड मात्र नहीं। जाड़े के दिनों में पड़ोसियों तक पहुंच उन्हें बेचैन करने वाले, शरीर पर रखे हुए कमल के पत्तों को भूनकर पापड़ बना देने वाले, बोतल का गुलाब जल सुखा डालने वाले ताप से कम ताप जायसी का नहीं है, पर उन्होंने उसके वेदनात्मक और दृश्य अंश पर जितनी दृष्टि रखी है उतनी उसकी बाहरी नाप जोक पर नहीं, जो प्रायः ऊहात्मक हुआ करती है। नाप जोक करने वाली ऊहात्मक पद्धति का जायसी ने कुछ ही स्थानों पर प्रयोग किया है, जैसे राजा की प्रेम पत्रिका के वर्णन में, आखर जरही न काहू छुआ, तब दुख देह की चला ले सुआ, अथवा नागमती के विरह ताप की इस व्यंजना में, जही पंखी के नियर होई, कहे विरह कै बात, सोई पंखी जाई जरी, तरीवर हो ही निपात। इस उहात्मक पद्धति का 2-4 जगह व्यवहार चाहे जायसी ने किया हो, पर अधिकतर वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना ही उनकी विशेषता है। इन्होंने अत्युक्ति की है, खूब की है, पर वह अधिकांश संवेदना के स्वरूप में है, परिणाम निर्देश के रूप में नहीं। जायसी ने जहाँ हेतुत्प्रेक्षा के माध्यम से विरह ताप की मात्रा का आधिक्य सूचित करने के लिए उहात्मक या वस्तु व्यंजनात्मक पद्धति का सहारा लिया है, वहाँ विरह ताप को सृष्टि भर में व्यक्त देखा है। अस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भय धूम जो उठा, दाढ़ा राहु केतु गरदाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा, और सब नखत तराई जरही, टूटही लूक धरति महपरही, जरै सो धरती ठा वही ठाऊ, दह की प्लास जरै तेही दाऊ। नागमती संदेश खंड छंद 12। यहाँ मेघ का श्याम होना, राहु केतु का जलना, सूर्य का तपना, चांद का क्षीण होना, पृष्ठ संख्या 288, पलास के फूलों का लाल होना आदि सत्य है। ये विरह ताप के कारण ऐसे हैं, यह बात कल्पित है। विरह के और अंगों का भी विन्यास जायसी ने इसी हृदय हारिणी और व्यापकत्व विधायनी पद्धति पर बाह्य प्रकृति को मूल आभ्यंतर जगत का प्रतिबिंब सा दिखाते हुए किया है। नागमती के रुदन और विरह से सारा संसार प्रभावित है। कुहू की जस कोइल रोई, रकत आंसू घुंगुच बन बोई, जहां जहां ठाड़ होई बनवासी, तह तह होई घुंगुच कै रासी। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती उपवन के पेड़ों के नीचे रात भर रोती फिरती है। इस दशा में पशु पक्षी पेड़ पल्लव जो कुछ भी सामने आता है उसे वह अपना दुखड़ा सुनाती है। वह पुण्य दशा धन्य है जिसमें ये सब अपने लगते हैं और यह जान पड़ने लगता है कि इन्हें दुख सुनाने से भी जी हल्का होगा। सब जीवों का अधीश्वर मनुष्य और मनुष्यों का अधीश्वर राजा, उसकी पटरानी जो कभी कभी बड़े बड़े राजाओं और सरदारों की बातों की ओर भी ध्यान नहीं देती थी, वही पक्षियों के से अपने हृदय की वेदना कह रही है। हृदय की इस उदार और व्यापक दशा का कवियों ने केवल प्रेम दशा के भीतर ही वर्णन किया है, यह बात ध्यान देने योग्य है। पंडित रामचंद्र शुक्ल, जायसी ग्रंथावली, भूमिका, पृष्ठ 40-41। कालिदास का यक्ष मेघ से संदेश भेजता रहा और नागमती उन्माद की स्थिति में पंछी दूत की व्यवस्था करती रही। फिरी फिरी रोव कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला, तू फिरी फिरी दाह सब पाखी, के ही दुख रैन न लावसी आंखी। कवि ने यहाँ सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। पद्मावती से कहने के लिए पंछी दूत से नागमती ने जो मोही भोग सो काजन बारी, सौह दी ठीक है चाखन हारी आदि संदेश भेजा है, वह अत्यंत मर्म स्पर्शी है। उसमें मान गर्व आदि से रहित सुख भोग की लालसा से अलग अत्यंत नम्र शीतल और विशुद्ध प्रेम की झलक मिलती है। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में कवि ने प्राय भारतीय पद्धति का ही अनुसरण किया है, यहाँ कोई अरुचिकारक दृश्य नहीं आया है। कृशता, ताप, वेदना आदि के वर्णन में भी उन्होंने श्रृंगार की उपयुक्त सामग्री सामने रखी है, केवल उसके स्वरूप में कुछ अंतर दिखा दिया है। कहीं कहीं फारसी साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है और ऐसे कुछ स्थलों पर विभत्तता भी आ गई है, जैसे पृष्ठ संख्या 289। विरह सरांग ही भूंज सी मासु, गिर गिर पर रकत के आंसू, कटी कटी मांसु सराग पिरोवा, रकत के आंसू मांसु सब रोवा, खिन एक बार मासु अस भूंजा, खिन ही चबाई सिंध अस गुंजा। संयोग वर्णन के संदर्भ में भी कहीं कहीं इस प्रकार के फारसी प्रभाव दिखते हैं, जैसे कुछ तुम्बी अब पीठी गड़े व कह जो हुकी गाढ़ अस धोव आदि। विरह जन्यता कृष्णा के भावों के अभिव्यक्ति में दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मांस रही नहीं देहा और हाड़ भय सब किंगरी आदि में अत्युक्ति मूलक वर्णन मिलते हैं, पर ऐसे स्थलों में भी गंभीरता और प्रतिपाद्य की मार्मिकता सर्वत्र है। बारह मासा के माध्यम से विरह वर्णन की परंपरा अपभ्रंश काव्यों में भिन्न मिल जाती है। 12वीं-13वीं शताब्दी से बारहमासा वर्णन लगातार मिलने लगता है। हिंदी में यह वर्णन एक दर्जन प्रबंध काव्यों में, एक दर्जन मुक्तकों के रूप में और लगभग 350 स्वतंत्र बारहमासों के रूप में मिलता है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए यह एक अच्छा माध्यम रहा है। हिंदी के इन समस्त बारहमासा वर्णनों में जायसी का बारहमासा सर्वाधिक मार्मिक और प्रभव विष्णु है। नागमती का बारहमासा विरह वेदना की प्रभव विष्णुता, मार्मिकता, कोमलता, मधुरता, प्रकृति व्यापारों के साथ सहचारिता, अकृत्रिमता, प्रांजलता और सर्वोपरि उत्तम व्यंजकता के दृष्टिकोणों से हिंदी साहित्य में एक महार्घ रत्न है। इसका प्रतिमान हिंदी साहित्य में कहीं नहीं है। प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का दिग्दर्शन और साथ ही दुख के नाना रूपों और कारणों की उद्भावना के माध्यम से जायसी ने एक सुंदर संश्लिष्ट भाव प्रवण चित्र प्रस्तुत किया है। इसकी स्वाभाविक व्यंजनामयी मर्म स्पर्शिता के लिए एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाह मंदिर को छावा, बरसे मेह चुवे नैनाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा, जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिनु थाकी, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी आदि। इन स्थलों पर परिवर्तनमान ऋतुओं और प्राकृतिक व्यापारों के साथ विरहिणी के करुणा कातर हृदय का सामंजस्य उपस्थित किया गया है। इस प्रकार की सादृश्य भावना कवि परंपरा सिद्ध है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि विरह वर्णन के क्षेत्र में जायसी बेजोड़ हैं। उनका बारहमासा हिंदी साहित्य में एक अन्यतम विरह काव्य है। सूफी कवियों का प्रकृति चित्रण या तो उद्दीपन के रूप में है या रहस्यवादी भावों की व्यंजना के लिए। पृष्ठ संख्या 290। वस्तु वर्णन की दृष्टि से भी इन कवियों ने सरोवर, उद्यान, नगर, जल क्रीड़ा आदि के वर्णन किए हैं। नूर मोहम्मद की इंद्रावती प्रिय के विरह में वसंत को उजाड़ समझती है। उस्मान की चित्रावली को वसंत में दूना शोक होता है और फाग धमारी पिचकारी को देखकर उसके शरीर में आग लग जाती है। शेख निसार की जुलेखा को भी भवन काट खाता है। मंझन की मधुमालती को भी दीवारी नहीं भाती। शेख रहीम की विरहिणी के नयनों में सावन की झड़ी लगी है। उसकी चोली चीर चुनरी भीग जाती है। उसके लिए बरहे मास पतझारी है। वियोग की विभिन्न दशाओं का वर्णन भी इन सूफियों के काव्य में मिलता है। इन अवस्थाओं के प्रस्तुतिकरण में इन कवियों का ध्यान विरह के शास्त्रीय अवस्थाओं के निरूपण की ओर न रहकर उसकी व्याप्ति के दर्शन की ओर ही है। एक अभिलाषा चित्त ध्यान प्रीतम पर राखा प्रेम बढ़े बाढ़ अभिलाखा इंद्रावती। दो चिंता चिंता कथन बीच घन परी चिंता करे घरी और घरी जेई उपकार दरस वह पावऊं के ही उपकारी के ढिग जावऊं इंद्रावती। तीन गुण कथन वह रावल जग बीच नवेला मन परान कहकी न अकेला वह विदग्ध सुकुमार पियारा रूप गगन सविता उजियारा इंद्रावती। चार स्मृति कहाँ सो वह शीतल कैलासा कहाँ सो सेज सुरत वह बासा कहाँ ललाट दुइज उजियारा कहाँ बैन निज चाटक डारा हंस जवाहिर। पाँच उद्वेग पुहुप भय कंटक और सुआ देखी न जाए हाथ को छुआ चंदन जो घनसार मिलावा जनु करवार सान पर लावा चित्रावली। पृष्ठ संख्या 291। छे उन्माद उन्माद सो रोवई हसई आंसू धरती मोती खसई चित्रावली। सात व्याधि प्रेम शरीर बेयाद बढ़ाया दूबर पीत भयो घनकाया पान न खाए न पीवे पानी भूख पियास भुलाए उरानी इंद्रावती। आठ जड़ता सुमिर सोवत बैठी ठाड़ी मन असमर्थ अवस्था बाढ़ी प्रेम झकोर भयो तहिसीसु बैर बूझे निसी रजनीसु इंद्रावती। नौ मरण जियत रहे ध्यान के बाहा ना तो होत मरण पलमाहा इंद्रावती। प्रलापावस्था का वर्णन कम मिलता है ग्लानी शंका असूया श्रम दीनता गर्व आदि भावों का भी इन काव्यों में वर्णन मिलता है। कुतुबन जायसी आदि सूफी कवियों का लक्ष्य प्रकृति के माध्यम से उद्दीप्त वेदना के भावों की व्यंजना थी। तुलसी के राम हमारे सामने विरह की स्थिति में एक ज्ञानी के रूप में आते हैं। दामिनी दमकी रही घनमाही खल की प्रीति यथा थिर नाही रामचरितमानस की स्किंदाकांड दोहा 14। तुलसी ने विरह में भी ज्ञान और नीति को ध्यान में रखा है पर ये सूफी कवि ज्ञान नीति की चर्चा विरह व्यंजना के संदर्भ में नहीं करते। वे केवल विरहिणी के प्रभाव विष्णु भावों को ही चित्रित करते हैं। प्रेम विरह की तीव्र और गाढ़ व्यंजना में ये कवि प्राय सफल रहे हैं। जैसे कि ही भांति अन्य सूफी कवियों ने भी केवल प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वक्तव्यों के द्वारा विरह की व्यंजना न कर उसकी भावात्मक व्यंजना अधिक की है। इंद्रावती की प्रेम पत्री को राजकुमार ने अपने हृदय से लगा लिया यह स्वाभाविक था पर उसके हृदय में भय था कि विरहाग्नि से यह पत्री जल न जाए। पढ़ी राखे मन ऊपर डरेऊ की मानस दाही पाती कहन जरावे धरेऊ नयन परताही नूर मोहम्मद। पृष्ठ संख्या 292। हंस जवाहिर की शब्द परी जवाहिर का संदेश लेकर उड़ी तो मार्ग के वन जल गए ले संदेश चली जही ओरा विरह लूक धाई चहु ओरा छूटत जब विरह की छारा बन खंड जरे हुए पतझारा। इन स्थलों में वस्तु की उहात्मक व्यंजना की गई है। इन कवियों ने प्रायः संपूर्ण सृष्टि को विरह में दुखी और रोते हुए चित्रित किया है। इस प्रकार के स्थल इन कवियों के यहाँ बहुत अधिक हैं। दक्षिणी हिंदी के कवियों ने विरह की विभिन्न अवस्थाओं के चित्रण किए हैं। चिंता रिजवान शाह रुअफ़ज़ा पृष्ठ 75 गुण श्रवण गुलशनी इश्क पृष्ठ 148 स्मरण कुतुब मुश्तरी पृष्ठ 75 उद्वेग गुलशन इश्क पृष्ठ 149 प्रलाप गुलशन इश्क पृष्ठ 81 उन्माद व्याधि वही पृष्ठ 165 प्रभृति अवस्थाओं की मार्मिक व्यंजना इनके काव्यों में मिलती है। इन कवियों ने भी विरह दशा के चित्रण के लिए प्रकृति का सहारा लिया है और परिवर्तमान प्रकृति के माध्यम से इन्होंने विरहणी की मनोदशाओं का सुंदर चित्रण किया है। सूफी साधक प्रेम पीर या विरह में मगन रहते हैं वसल या मिलन के लिए वे वियोग को आवश्यक मानते हैं। नूर मोहम्मद ने कहा है नूर मोहम्मद जगतमो जो नहीं होत वियोग तो पहचान न जात यह सिंगार संजोग। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों में नायक और नायिका दोनों में पूर्व राग का उदय दिखाया गया है। स्वप्न दर्शन गुण श्रवण चित्र दर्शन या साक्षात दर्शन में से किसी भी रूप में प्रिय दर्शन पाकर अभिलाष हेतु विरह जागृत हो जाता है। चित्रावली उस्मान चित्रावली पृष्ठ 49 में पूर्व राग का उदय सुजान के चित्र दर्शन से हुआ है। मधुमालती पृष्ठ 122 में यह मनोहर के प्रत्यक्ष दर्शन से जगा है। अंतःकरण सर्व मंगला के रूप गुण श्रवण से मोहित हुआ था। रत्नसेन पद्मावती के रूप वर्णन को सुनकर मोहित हुआ था। प्रणय जनित मान का चित्रण मधुमालती में मिलता है। कहे सी मान मोहि बूझ न नाहा, मैं तजी मान देऊं गल बाहा। चित्रावली में भी पृष्ठ संख्या 293 दिखाने के लिए मान का उल्लेख हुआ है। चित्रावली उस्मान चित्रावली पृष्ठ 203, हंस जवाहिर जायसी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा पृष्ठ 55-56 और इंद्रावती में ईर्ष्याजन्य मान के चित्रण मिलते हैं। अन्य भाव अन्य रस करुण रस। श्रृंगार के अनंतर करुण ही ऐसा रस है जिसकी ओर जायसी की सर्वाधिक आसक्ति है। उन्होंने विप्रलंब श्रृंगार के संदर्भ में करुण भावों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। पद्मावत के दो स्थलों पर करुण रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। एक, रत्नसेन के सिंघल गमन के अवसर पर कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया चित्तौड़ का दृश्य, जायसी ग्रंथावली नागरिक विचारणी सभा पृष्ठ 55-56 और रत्नसेन की सिंघल से विदाई के समय का दृश्य, वही पृष्ठ 170। रत्नसेन के जोगी होकर घर से निकलने पर रानियां जो विलाप करती हैं उसमें पहले सुख के आधार के हटने का उल्लेख है, फिर उससे उत्पन्न विषाद भाव की व्यंजना है। रो वही रानी तजही पराना, नोचही बार करही खरिहाना, चूरही गीव अभरन पुरहारा, अब कापर हम करब सिंगारा। यहाँ करुण रस की पूरी व्यंजना है क्योंकि विभाग के साथ ही रुदन और बाल नोचना अनुभव और विषाद संचारी भी है। रत्नसेन की मृत्यु पर जायसी ने जिस करुण परिस्थिति का दृश्य दिखाया है वह अत्यंत प्रशांत और गंभीर है। रानियों के मुख से शुद्ध आवेग की व्यंजना नहीं कराई गई है, केवल पद्मिनी के उस समय के रूप की झलक दिखाकर परिस्थिति की गंभीरता का आभास दिया गया है। पद्मावती पुन पहिरी परोटी, पद्मावती पुन पहिरी पटोरी, चली साथ पिय कै होई जोरी, सूरज छिपा रैनी होई गई, पूनियु ससी अमावस भई, छूटे केस मोती लर छूटी, जानहु रैनी नखत सब टूटी, सेंदुर परा जसीस उघारी, लागी आगी लागी चह जग अंधियारी। सूर्य रूपी रत्नसेन अस्त हुआ। पद्मावती के पूर्ण चंद्र मुख में एक कला भी नहीं रह गई। पहले एक स्थान पर कवि कह चुका है कि चांद ही कहाँ ज्योति औकरा, सूरज के ज्योति चांद निर्मरा। जब सूर्य ही नहीं रहा तब चंद्रमा में कला कहाँ से रह सकती है। काले केश छूट पड़े हैं, मोती बिखर कर गिर रहे हैं, अमावस्या की अंधेरी छा गई है जिसमें नक्षत्र इधर उधर टूट कर गिरते दिखाई पड़ते हैं। वह घने काले केशों के बीच सिंदूर की रेखा दिखाई पृष्ठ संख्या 294 पड़ी। अब घोर अंधकार के बीच आग भी लगा चाहती है, सती की ज्योति से सारा जगत जगमगाया चाहता है। पद्मिनी के तात्कालिक रूप में कवि ने प्रस्तुत करुण परिस्थिति की गंभीरता की पूर्ण छाया दिखा दी है। पद्मिनी सारे जगत के शोक का स्वच्छ आदर्श हो गई है जिसमें सारे जगत के गंभीर शोक का प्रशांत स्वरूप दिखाई पड़ता है। कुछ काल के लिए पद्मिनी सहित सारा जगत शोक संसार में मग्न दिखाई पड़ता है, फिर पद्मिनी और नागमती दोनों इस दुखमय जगत से मुंह फेरती हैं और उस लोक की ओर दृष्टि करती हैं जहां दुख का लेश नहीं। दो सती चढ़ी खाट बैठी और शिवलोक परातिन दीठी, उनके सारे दुख द्वंद छूट गए हैं, न झगड़ा न कलह और न संताप, दोनों सती होने जा रही हैं। आगे आगे जो बाजा बज रहा है वह प्रेम मार्ग के विजय का बाजा है। एक जो बाजा भयो बियाहु, अब दूसरे होई ओर निबाहु, रत्नसेन की चिता तैयार है। दोनों रानियां चिता के साथ प्रदक्षिणा करती हैं। एक बार जो भावरी हुई थी उससे इस संसार यात्रा में रत्नसेन का साथ हुआ था, अब इस भावरी से परलोक के मार्ग में साथ हो रहा है। हम तुम नाथ दुआ जग साथी, हिंदू सती का यह अत्यंत गंभीर शांत और मर्म भेदी रूप है। आज सूर दीन अथवा आज रैनी ससी बूढ़, आज नाच जीव दीजिय आज आगी हम जूड़, लेक सरी ऊपर खाट बिछाई, पौड़ी दुओ कंत गरलाई, लागी कंठ आगी होरी, छार भई जरी अंग न मोरी। जायसी ग्रंथावली नागरिक विचारणी सभा पृष्ठ 98-100। इंद्रावती में भी नायक के निधन पर इस प्रकार की करुण रस की योजना मिलती है। उसमें विवाहित राजकुमार को उसकी संकोचशील रानी रोक नहीं पाती, वह अनिष्ट की आशंका से रो पड़ती है। सुनते मुरुचि पड़ी भुई नारी, जाना स्वर्ग ते काठ पिठारी, टूटा तन पिंजर जीव छूटा, उड़ा सो प्राण प्रेम गढ़ लूटा, दक्षिणी हिंदी की प्रेम गाथाओं में लैला मजनू के अतिरिक्त अन्य गाथाएं सुखांत हैं। लैला मजनू में लैला के मृत्यु का समाचार सुनते ही मजनू भी मर जाता है, इस कारण इस कथा में करुण की व्यंजना नहीं हुई है। अन्य प्रेम कथाओं में भी करुण रस के लिए अवकाश नहीं है। फूल बन की तृतीय कथा में पृष्ठ संख्या 295 करुण रस की सुंदर व्यंजना मिलती है। मिस्र के बादशाह को जब ज्ञात हुआ कि षड्यंत्रकारियों ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है, तो इस समाचार के सुनते ही चारों ओर करुणा की लहर दौड़ पड़ी। फूल बन पृष्ठ 124। वात्सल्य रस। पद्मावत में वात्सल्य रस की व्यंजना दो स्थलों पर हुई है, एक रत्नसेन के जोगी होकर निकलने के अवसर पर और दो बादल की युद्ध यात्रा के अवसर पर। इन दोनों स्थलों पर अभिव्यंजना माता के ही मुख से है। रत्नसेन की माता का वात्सल्य सुख के अनिश्चय द्वारा व्यक्त है और बादल की माता का शंका संचारी द्वारा। ये दोनों चित्र पर्याप्त प्रभु विष्णु बन पड़े हैं। छोटी सी अवस्था में बादल रण क्षेत्र में जाने के लिए उद्यत है, उस समय माता के हृदय में शंका का उदय स्वाभाविक है। यहाँ हम माँ के कोमल हृदय की झांकी देखते हैं। बादल राव मोर तुई बारा, का जानसी कस होई जुझारा, बरी सही सेल बान घन घोरा, धीरज धीर न बांध ही तोरा। अन्य काव्यों में वात्सल्य रस के सुंदर चित्रों का अभाव है। वीर रस। हिंदी प्रेमाख्यानों में कवियों ने नायकों की महानता दिखाने के लिए युद्धों के भी वर्णन किए हैं। इन युद्धों में नायक अपने विरोधी की पराभूत करके विजय श्री प्राप्त करता है। प्रायः सभी प्रेमाख्यानों में श्रृंगार प्रेम के साथ ही वीर रस का भी सुंदर परिपाक मिलता है। चंदायन में अनेक बार लोरिक के युद्धों के चित्र उपस्थित किए गए हैं और ऐसे प्रत्येक स्थल पर लोरिक एक श्रेष्ठ युद्ध वीर के रूप में चित्रित है। उसकी वीरता पर मुग्ध होकर ही तो चंदा उस पर आसक्त हुई और उसके साथ भाग निकली थी। पद्मावत में वीर रस की व्यंजना उत्तम कोटि की है। युद्ध की तैयारी, सेना की सजावट, चढ़ाई की हलचल, घोर घमासान युद्ध, अस्त्र शस्त्र, गोरा बादल आदि वर्णनों के संदर्भ में कवि ने वीर रस का जीवंत चित्रण किया है। रत्नसेन, गंधर्व सेन, गोरा बादल आदि क्षत्रिय हैं, अलाउद्दीन भी योद्धा है। युद्ध के प्रसंगों में वीर रस का प्रवाह उमड़ पड़ा है। गोरा का वीर रस प्लावित एक चित्र द्रष्टव्य है। सबय कटक मिली गोर ही छेका, गूंजत सिंह जाई नहीं टेका, जे ही दिशी उठे सोई जनु खावा, पलटी सिंह ते ही ठाव न आवा। गोरा के अंतिम क्षण का चित्र तो और भी मार्मिक बन पड़ा है। भाट कहा घनी गोरा, तू भा रावण राव, आती समेटी बांध के तुरय देत है पाँव। पृष्ठ संख्या 296। युद्ध के संदर्भ में डाकिनियों का विभत्स वर्णन भी मिलता है। युद्ध जन्य भयानकता और विभत्सता के चित्रण भी पद्मावत में मिलते हैं। अलाउद्दीन के दूत को रत्नसेन ने जो उत्तर दिया, का मोहि सिंह दिखावसी आई आदि, जैसी ग्रंथावली नागरी विचारणी सभा पृष्ठ 250-51 है, उसमें उत्साह नामक स्थायी भाव की सुंदर निष्पत्ति हुई है। मधुमालती, भाषा प्रेम रस आदि प्राय सभी प्रेम काव्यों में नायकों के युद्धों के वर्णन है। इंद्रावती में राजा की पूर्व पत्नी सुंदर के युद्ध का भी चित्रण किया गया है। कालिंजर के राजा कामसेन ने राजा की अनुपस्थिति में रानी को पाने के लिए आक्रमण किया, उस समय रानी सुंदर ने उसे युद्ध में पराभूत कर दिया। फूलबन में शाही मिस्र के सिंध पर आक्रमण और युद्ध के संदर्भ में वीर रस का सुंदर परिपाक मिलता है। फूलबन पृष्ठ 131-133। विभत्स रस का भी उसमें सुंदर चित्रण मिलता है। वही सैफुल मुलुक वदी उल जमाल में भी वीर और विभत्स रसों के अच्छे चित्र मिलते हैं। इन सूफी कवियों के नायक युद्धवीर हैं, दानवीर हैं और काम प्रेम वीर भी हैं। रौद्र रस का सुंदर परिपाक किसी भी सूफी कवि के काव्य में नहीं मिलता। अलाउद्दीन का पत्र रत्नसेन को मिला, इस अवसर पर रौद्र रस की सुंदर व्यंजना हो सकती थी। पत्र पढ़ा गया, सुनी अस लिखा उठा जरी राजा, जानहु देव तड़प घन गाजा, का मोहि सिंह दिखावसी आई, कहो तसार दूल धरि खाई। और इसी के बाद रत्नसेन ने उस पत्र के अनौचित्य का विश्लेषण शुरू किया। भले ही जो साह भूमिपति भारी, मांग न को पुरुष कह नारी। यूं तो रौद्ररस की दृष्टि से यहाँ अनुभव के रूप में डांट डपट और उग्र वचन है, संचारी के रूप में अमर्ष है। इसके आगे आत्मा वदान कथा में भी रौद्र रस के अनुभव के रूप में है। हौ रणथम्भऊर नाथ हमीरु, कलपि माथ जय दीन शरीरु, हौ तो रतन सेन सकबंधी, राहु बेधी जीता सैरंध्री, विक्रम सरिस कीन जय साका, सिंघल दीप लीन जौताका। रौद्र रस की इन अवयवों के बावजूद पद्मावत के इस अंश में रौद्र रस का परिपाक नहीं है। जैसी का कोमल प्रेम प्रवण हृदय रौद्र रस पूर्ण वृत्तियों के वर्णन के उपयुक्त नहीं था। पृष्ठ संख्या 297। कथा कुवरावत में जब राजकुमार से मोहम्मद गोरी ने कर मांगा तो इसे अपमान समझकर उसने क्रोध प्रदर्शित किया। चित्रावली में सोहिलेश ने जब सागर गणपति से उसकी कन्या की मांग की तो वीर राजा ने क्रोध का प्रदर्शन किया, पर इन अवसरों पर भी रौद्र रस का सुंदर परिपाक नहीं हो सका है। हिंदी सूफी काव्यों में हास्य रस का अभाव है। यदि कहीं हास्य के लिए अवकाश मिला भी है तो इन कवियों की प्रेम चर्चा पांडित्य प्रदर्शन या चमत्कार प्रदर्शन की वृत्ति बाधक हो गई है। पद्मावती की सुहागरात के पश्चात उसकी सखियों ने कुछ ठिठोली अवश्य की है, पर वहां भी हास्य की निष्पत्ति नहीं हो सकी है। इंद्रावती में विवाह के पश्चात जब राजकुमार इंद्रावती के पास गया तो इंद्रावती की सखियों ने उससे परिहास किया। जानी परत भगिनी तुम्हारी होई ही प्यारी अति अधिकारी। सैफुल मुलुक वदीउल जमाल में एक कुरूप हबशी स्त्री के स्वरूप की कवि ने चर्चा की है। सैफुल मुलुक वदीउल जमाल दक्षिण हिंदी काव्य धारा पृष्ठ 146। पर यह चर्चा भी हास्य की निष्पत्ति में असमर्थ है। हिंदी सूफी काव्य में मुख्यतः श्रृंगार वीर और करुण रस का ही सुंदर परिपाक हुआ है। लौकिक और आध्यात्मिक प्रेम के बहाने भक्ति रस की भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। सूफी काव्य में हास्य रस का प्राय अभाव है। श्रृंगार वीर और करुण रसों की व्याप्ति इन काव्यों में प्राय सर्वत्र है। इनसे संबद्ध भावों का उत्कर्ष, रस परिपाक की स्वाभाविकता, प्रेम भाव और प्रेमानुभूति की तीव्रता हिंदी सूफी काव्यों के रस प्रसंग में विशिष्ट आकर्षण के केंद्र हैं।